परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरम्भ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यहेजकेल नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर यहेजकेल नबी के द्वारा से हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि वह अपने विद्रोहियों को नाश करता है। इतना ही नहीं, हमने इस बात को भी देखा कि शैतान जो घमंडी है वह उसे तोड़ता है। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थी और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हम में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए, उनके जीवन के लिए और इस समय के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। हमारी विनती है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन का अध्ययन करें तो प्रत्येक श्रोता भाई बहन आपके वचन को समझ कर ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश और परेशान हैं, किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं, विशेष करके हमारे उन जवान भाई बहनों के लिए जो नौकरी की तलाश में हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं। पिता परमेश्वर, आप इन सभी भाई बहनों की सहायता करें, अपने वचन के द्वारा से इनसे बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन के द्वारा से हमने देखा कि हमारी आम धारणा से कैसा यह विपरीत और कैसा सुंदर और वैभवशाली शैतान है जो घमंड करने के कारण गिराया गया और एक दिन परमेश्वर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाएगा। जी हाँ, आज हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा हुआ है, देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए, तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया ना जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर शैतान से जगत को मुक्त करवाएगा। हम उस दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे मित्रों, पद 20 से 24 में सैदा पर दंड की घोषणा है, परंतु सर्वनाश की नहीं। वह कहता है कि उसकी सड़कों पर लहू गिरेगा और ऐसा ही हुआ। यह इतिहास है। यह ध्यान देने के योग्य बात है कि सोर राजधानी उजाड़ा गया और खोदकर पानी में डाला गया तथा फिर खड़ा न हुआ। सैदा वहां से 22 किलोमीटर दूर है, उसे भी दंड दिया गया परंतु उसका सर्वनाश नहीं किया गया। वह आज भी है और वहीं मध्य पूर्व का तेल आता है, पाइपों द्वारा वहां तक आकर फिर तेल जहाजों में भरा जाता है। सैदा एक समृद्ध बंदरगाह है और सोर तट पर कुछ ही दूर खंडहर बना हुआ है। वहां पर मछुओं का एक छोटा सा गांव है। परमेश्वर ने कहा था कि सोर फिर न बस पाएगा, तो वह जानता था कि वह क्या कह रहा है। इस अध्याय में उसने स्पष्ट भविष्यवाणियां की हैं। सोर नष्ट होगा और फिर बसाया न जाएगा। सैदा को दंड मिलेगा, परंतु उसका सर्वनाश नहीं होगा। आज लगभग 2500 वर्ष हो गए हैं और सैदा अब भी है। मेरे प्रियो, हम यहेजकेल 28 उसके 25 और 26 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं इसराइल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच वे तीतर बीतर हुए हैं और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहराऊंगा, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। वे उसमें निडर बसे रहेंगे, वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उनसे अभिमान का वर्ताव करते हैं। तब वे जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा ही है। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है, मैं इसराइल को पुनः संगठित करूंगा। इसराइल की संतान के साथ परमेश्वर की योजना और कामों में शैतान बाधा नहीं डाल सकता है, न ही आज कोई बाइबल विद्वान इसराइल के स्वदेश लौटकर शांति में वास करने की परमेश्वर की योजना का इनकार कर सकता है। आज लोग विद्वानों की बात मान लेते हैं कि परमेश्वर को अब इसराइल से प्रयोजन नहीं, क्योंकि वे यशाया, यर्मिया, यहेजकेल, दानियल और अन्य भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। इन भविष्यद्वक्ताओं का विषय यही है कि परमेश्वर का प्रयोजन इसराइल से समाप्त नहीं हुआ है। जी हां, उन्हें इन पुस्तकों को पढ़ना आवश्यक है। वे परमेश्वर के वचन पर नया प्रकाश डालते हैं और वचन एक पहेली न रहकर क्रमवार व्यवस्थित हो जाता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 28 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और अध्याय 29 से देखेंगे, जिसका विषय है मिस्र से संबंधित भविष्यवाणी, मिस्र के लिए विलाप। तो आइए हम पहले देखें मिस्र से संबंधित भविष्यवाणी। अनेक रूढ़िवादी टीकाकारों के विचार में मिस्र से संबंधित भविष्यवाणियां सोर संबंधित भविष्यवाणियों की तुलना में अधिक रोचक है, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। सोर संबंधित भविष्यवाणियां वास्तव में असामान्य है। मिस्र संबंधित भविष्यवाणियां भी कम रुचिकर नहीं है और इस अध्याय में भी एक रोचक भविष्यवाणी है। मिस्र एक महान देश था जिसे उजाड़ा नहीं गया और सदियों तक वह अपनी एकता को संभाले रहा। वह प्राचीनतम राष्ट्रों में से एक है। उसे शहरपनाह की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसका सुरक्षा कवच रेगिस्तान था। उसका एक ही प्रवेश द्वार था, नील नदी की घाटी। मिस्र को बस उसी एक स्थान पर अच्छी सुरक्षा का प्रबंध करना था। अतः आप देखेंगे कि मिस्र के नगरों को शहरपनाह की आवश्यकता नहीं थी। अब परमेश्वर कहता है कि मिस्रवासी 40 वर्ष की बंधुआई में जाएंगे। तो आइए हम पढ़ें यहेजकेल 29 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, दसवें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर करके उसके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। परमेश्वर मिस्र देश के विरुद्ध एक निश्चित दृष्टिकोण को अपनाता है। इसी देश ने परमेश्वर की प्रजा को ईंटों के काम में दास बनाया था और उनसे मूर्ति पूजा भी करवाई थी। मिस्र इसराइल के लिए आंख का कोटा था। परंतु इसराइल बार बार उनके पास सहायता मांगने के लिए जाता था। वे मिस्र पर निर्भर करते थे, परंतु परमेश्वर कहता है कि वह मिस्र को नष्ट कर देगा। यहेजकेल 29 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, यह कह परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूं। हे बड़े मगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है, मेरी नदी मेरी निज की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है। फिरौन नील नदी को अपनी नदी कहता है, जैसे कि वह मगरमच्छ है। ध्यान दीजिए कि मिस्रवासी सब प्रकार के पशु पक्षी और कीड़े मकोड़ों की उपासना किया करते थे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 7-11 में जितनी भी विपत्तियां आई थी, वे सब उसके देवताओं के विरुद्ध थी। विपत्तियां कैसी भी भयानक क्यों न थी, उसमें परमेश्वर का विनोदी स्वभाव प्रकट होता है। कल्पना कीजिए कि वे मेंढक देवता हेका की पूजा करते थे और पूजा करके सोते हैं, और सुबह देखते हैं कि उनके घर में मेंढक ही मेंढक मरे हुए हैं। क्या आप अपने देवता को मारेंगे या भगाएंगे? मेरे विचार में परमेश्वर इस दृश्य को देखकर हंस रहा होगा। मेरे प्रियो, यह फिरौन अर्थात राजा होप्रा नाम का है। वह फिरौन नीको का पोता था। नीको से मरगिदो में युद्ध करते हुए यहूदा का राजा योशिय्याह मारा गया था। यहोयाकीम, यहोयाकीन और सिदकिय्याह सब यरूशलेम के घेराव के समय होप्रा से मदद मांगने के लिए गए थे। मिस्र की सेना ने आकर फिनेके में प्रवेश किया, जिसके कारण कसदियों को यरूशलेम से पीछे हटना पड़ा था। यर्मिया ने होप्रा के विनाश की भविष्यवाणी की थी। यर्मिया 46 अध्याय उसके 25 और 26 पद में लिखा है, इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है, देखो मैं नगरवासी आमोन और फिरौन राजा और मिस्र को उसके सब देवताओं और राजाओं समेत और फिरौन को उन सब के समेत जो उस पर भरोसा रखते हैं दंड देने पर हूँ। मैं उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और उसके कर्मचारियों के वश में कर दूंगा, जो उनके प्राण के खोजी हैं। उसके बाद वह प्राचीन काल के समान फिर बसाया जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, आलोचक इस बात का बतंगड़ बनाते हैं कि यहेजकेल की भविष्यवाणी उस समय नहीं 17 वर्ष बाद पूरी हुई थी, परंतु सावधानी पूर्वक अध्ययन करने पर आपको ज्ञात होगा कि उसकी भविष्यवाणी की तत्कालिक पूर्ति के विषय कुछ नहीं कहा गया है। मिस्र 17 वर्ष बाद नाश किया गया, परंतु जैसे परमेश्वर ने कहा था ठीक वैसे ही हुआ। अब देखिए परमेश्वर मिस्र के विषय में क्या कहता है। यहेजकेल 29 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, 40 वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उन जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा जिनमें वे तीतर बीतर हुए हैं। ध्यान दीजिए, 17 वर्ष बाद बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने आकर मिस्रवासियों को बंदी बनाया और बंधुआई में ले गया, जहां वे 40 वर्ष दासत्व में रहे। इसराइलियों के समान नहीं, जैसे वे 70 वर्ष गुलामी में रहे। यहेजकेल की पुस्तक 29 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, और मैं मिस्रियों को बंधुआई से छुड़ाकर पत्रास देश में, जो उनकी जन्मभूमि है, फिर पहुंचाऊंगा और वहां उनका छोटा सा राज्य हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप अगले पद पर विशेष ध्यान दीजिए। 29 के 15 पद में लिखा हुआ है, वह सब राज्यों में छोटा होगा और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे जाति जाति पर फिर प्रभुता न करने पाएंगे। मेरे मित्रों, मिस्र प्राचीन संसार की महाशक्ति था। वे इतिहास के आरंभ ही से एक महान राष्ट्र थे। उनके स्मारक और कब्रें प्रकट करती हैं कि उनकी सभ्यता किसी से कम नहीं थी। आज के अनेक इतिहासकार कहते हैं कि यूनानियों ने मिस्र से बहुत जानकारी प्राप्त की थी, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं नबूकदनेस्सर को तुम्हें बंदी बनाने दूंगा, और यही नहीं, तुम 40 वर्ष तक दासत्व में रहोगे और उसके बाद स्वदेश लौटोगे, परंतु तुम तब तक एक छोटा सा राज्य ही होगे, वरन सब राज्यों में सबसे छोटे। मेरे मित्रों, मध्य पूर्व में अनेक स्थानों की लोग यात्रा करते हैं और देखा गया है कि परमेश्वर की भविष्यवाणी कैसी शुद्ध है। यदि आप राजधानी कैरो जाएं, तो वहां उनकी पति दशा अवश्य देखेंगे। यहेजकेल 29 उसके 19 और 20 पद में लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वह उसकी भीड़ को ले जाएगा और उसकी धन संपत्ति को लूटकर अपना कर लेगा, अतः यह मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन लोगों ने मेरे लिए काम किया था। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, बेबीलोन इन सब देशों को जीतेगा, सोर, मिस्र और निसंदेह इसराइल। बेबीलोन पहला महान राष्ट्र था। मेरे प्रियो, यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 29 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 30 से जारी रखेंगे और हम देखते हैं कि मिस्र के लिए विलाप। अध्याय 30 को विलाप गीत माना जाता है। यहेजकेल मिस्र के उजड़ने की भविष्यवाणी करता है और निश्चय ही वह एक उजड़ा हुआ देश है। आइए हम पढ़ें यहेजकेल 30 उसके एक पद में लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यह वाक्यांश कितनी बार दोहराया गया है मैं नहीं जानता। यहेजकेल किसी के मन में संदेह को स्थान नहीं देना चाहता था कि यह किसका वचन है। वे जाने कि यह परमेश्वर का वचन है। यहेजकेल 30 के दो पद में लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय हाय करो, हाय उस दिन पर। यह विलाप और दुख मानने का समय है, विलाप गीत। यहेजकेल 30 के तीन पद में पढ़ते हैं, क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है, वह बादलों का दिन और जातियों के दंड का समय होगा। वहां बादलों का आना बड़ी असामान्य बात है, क्योंकि वहां वर्षा एक इंच से भी कम होती है। वे जल के लिए नील नदी पर आश्रित रहते हैं। प्रसंगवश वे नील नदी के मगरमच्छों की उपासना करते थे, वरन प्राणी जगत में प्रत्येक जंतु की उपासना करते थे। लिखा है कि जातियों के दंड का समय, या कहें अन्य जातियों का समय। आज संपूर्ण विश्व में जातियां बलवा कर रही हैं। यहेजकेल 30 के चार पद में पढ़ते हैं, मिस्र में तलवार चलेगी और जब मिस्र में लोग मारे जाकर गिरेंगे, तब कूश में भी संकट पड़ेगा। लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे और उसकी नींवें उलट दी जाएंगी। मेरे प्रियो, कभी कभी मिस्र और कूश इथोपिया में समझौता हो जाता था, जबकि अधिकांश समय दोनों देशों में बैर और युद्ध की स्थिति ही रहती थी। अनेक रूढ़िवादी विचारकों का कहना है कि मूसा जब फिरौन के पुत्री का पुत्र था, तब वह दूसरा फिरौन कहलाता था और उसने इथोपिया के विरुद्ध युद्ध किया था। हम आगे पढ़ते हैं यहेजकेल 30 उसके 5 पद में, कूश, पूत, लूद और सब दोगले और कूब लोग और वाचा बांधे हुए देश के निवासी मिस्रियों के संग तलवार से मारे जाएंगे। इस समय इन राष्ट्रों में समझौता था, परंतु वे नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे, क्योंकि वह विश्व विजेता है। वह दानिय्येल की पुस्तक अध्याय 2 के अनुसार सोने का सिर है। आगे लिखा है यहेजकेल 30 के 6 में, यहोवा यूं कहता है, मिस्र के संभालने वाले भी गिर जाएंगे और अपनी जिस सामर्थ पर मिस्री फूलते हैं वह टूटेगी, मिगदोल से लेकर सवेने तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इसराइल ही नहीं, सब पड़ोसी राज्यों ने मिस्र से सहायता की आशा की थी और वे सब एक साथ दंड पाएंगे। यहेजकेल 30 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, मैं नदियों को सुखा डालूंगा और देश को बुरे लोगों के हाथ कर दूंगा, और मैं परदेशियों के द्वारा देश को और जो कुछ उसमें है उजाड़ करा दूंगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। मेरे मित्रों, ये नदियां नील नदी के डेल्टा में उसकी शाखाएं हैं, वे अनेक थी। वही वह स्थान गोशेन है जहां पहले याकूब का परिवार ठहरा था। मैं नदियों को सुखा डालूंगा और देश को बुरे लोगों के हाथ कर दूंगा। आगे चलकर मिस्र सिकंदर महान के अधीन हुआ और उसके मरणोपरांत उसके सेनापतियों ने उसका जीता हुआ क्षेत्र बांट लिया था। विलियोपट्टा जो एक यूनानी थी मिस्र पर राज कर रही थी। हम देखते हैं, और मैं परदेशियों के द्वारा देश को और जो कुछ उसमें है उजाड़ कर दूंगा। मिस्र पर विदेशियों ने राज्य किया और ये सब नहरें बंद कर दी थी। मैं तो वहां नहीं गया, परंतु मेरा एक मित्र जो वहां गया था उसने बताया कि वह संपूर्ण क्षेत्र आज दलदल है। परमेश्वर ने कहा था कि वह उस देश को उजाड़ कर देगा और आज वह उजड़ा हुआ ही है। यहेजकेल 30 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं नोप से मूर्तों का नाश करूंगा और उसमें की मूर्तों को रहने न दूंगा, फिर कोई प्रधान मिस्र देश में न उठेगा और मैं मिस्र देश में भय उपजाऊंगा। लिखा है, मैं नोप में से मूर्तों का नाश करूंगा। नोप मेम्फिस है जो यहेजकेल के समय में एक महानगर था। वह एक धनान्य नगर था जहां मूर्तियों की बहुत आयत थी। सड़क के दोनों ओर मूर्तियां ही मूर्तियां थी। वह नगर की सजावट थी। मूर्तियों का ऐसा प्रदर्शन किसी और नगर में उस समय नहीं था। परमेश्वर कहता है कि वह मूर्तियों का नाश कर देगा। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि मैं मेम्फिस गया हूँ, वहां आज एकमात्र मूर्ति है तो वह केवल रामसे की एक बड़ी सी प्रतिमा है। वह भूमि पर गिरी पड़ी है और उसे सुरक्षित करने के लिए उसके चारों ओर एक इमारत का निर्माण किया गया है। परमेश्वर ने जो कहा था वही किया, उसने वहां से मूर्तियां समाप्त कर दी। तब हम आगे पढ़ते हैं, फिर कोई प्रधान मिस्र देश में ना उठेगा। आज मिस्र में राजवंश नहीं है और न ही कोई शासक महान कहलाने योग्य है। उन्हें सहायता और सहयोग के लिए अन्य राष्ट्रों की ओर देखना पड़ता है। यहेजकेल 30 के 15 पद में लिखा हुआ है, सीन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और नो की भीड़ भाड़ का अंत कर डालूंगा। ध्यान दीजिए, सीन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा। आज यह स्थान पूरी तरह से रेत में दब गया है और नो की भीड़ भाड़ का अंत कर दूंगा। यह स्थान थेबीज है जो नील के ऊपरी क्षेत्र में एक महानगर था। खंडहर तो है परंतु वैभव समाप्त हो गया है। मेरे प्रियो, अगले पद में परमेश्वर मिस्र देश के महानगरों के बारे में कहता है, ये नगर आज विलोप हो गए हैं। यहेजकेल 30 उसके 21 और 22 पद में लिखा है, फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है और देख, ना तो वह जोड़ी गई ना उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन जाए। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूं और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर फिर कहता है कि मिस्र उजड़ जाएगा। मिस्र के शासकों के चित्रों में राजदंड सदा उनके हाथ में दिखाया गया है, जो उनके सामर्थ्य का प्रतीक है। परमेश्वर कहता है कि मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है। टूटी हुई भुजा से राजदंड नहीं पकड़ा जा सकता है। परमेश्वर यह भी कहता है, न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य हो सके। बेबीलोन मिस्र पर विजयी होगा, फिरौन में उसे रोकने की शक्ति न होगी। यह सब एक एक शब्द पूरा हुआ। मेरे मित्रों, परमेश्वर सच्चा है और वह जो कुछ भी कहता है वह सच्चा ही होता है। आज हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए भी इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं भी परमेश्वर की उन बातों को सुने और उसके अनुसार चलें, ताकि हम ऐसे दंड से बच सकें। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
सच्चा साथी, सच्चाई है तेरा मार्ग। यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चाई है तेरा मार्ग। तेरी राह पर जो कदम हम रखें, मिलता है तेरा प्यार। तेरा प्यार अनोखा, उसमें जो डूबा होता है उसका उद्धार। यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चाई है तेरा मार्ग। तेरे खून की धारा हमको सुनाए तेरा गहरा प्यार। तेरे खून में मेरा पाप डूबा, तेरा जीवन है मुझ पे उधार। यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चाई है तेरा मार्ग। यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चाई है तेरा मार्ग। यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चाई है तेरा मार्ग।